ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फौज और इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के मुजरिमाना इकदाम पर अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कमजोर मौकिफ पर कड़ी नुक्ताचीनी की है।
ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 4 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमानों के जबरी कूच को म्यांमार के मुसलमानों का नस्ली तस्विया करार दिया है। मस्कुरा तंजीमों ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार की फौज और इंतहा पसंद बुद्धिस्टों के हमले फौरी तौर पर बंद कराने का भी मुतालबा किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वह बुध के रोज होने वाले इजलास में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम बंद कराने के लिए ठोस तदाबीर अख्तियार करे। दूसरी जानी बच्चों के आलमी अदारे यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि बांग्लादेश पहुंचने वाले 2 लाख रोहिंग्या बच्चों की जिंदगियां खतरे से दो चार हैं। यूनिसेफ के जारी करदा बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश के सरहदी कैंपों में मुकीम 2 लाख रोहिंग्या बच्चों को फौरी तौर पर गजाई अशिया, दवाओं और दीगर अशिया की जरूरत है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 25 अगस्त से अब तक तकरीबन 4 लाख रोहिंग्या मुसलमान अपना घर बार छोड़कर म्यांमार से बांग्लादेश नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं, जिनमें 60% तादाद बच्चों की है। यूनिसेफ के मुताबिक पीने के साफ पानी की फराहमी और सफाई के निजाम का क्याम बांग्लादेशी सरहद पर कायम रोहिंग्या पनाहगुजी कैंपों की अव्वलीन जरूरत है। अक्वामे मुत्तहिदा के माहिरीन का कहना है कि बांग्लादेशी सरहद पर रोहिंग्या पनाहगुजीनों की आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी है और पहले से कायम किए गए कैंप पनाहगुजीनों से भर चुके हैं। मगरबी म्यांमार के मुस्लिम आबादी वाले सूबे राखीन में म्यांमार की फौज और इंतहा पसंद बुद्धिस्ट मलेशिया के हमलों के नतीजे में कई हजार रोहिंग्या मुसलमान मारे जा चुके हैं। तकरीबन 4 लाख अफराद बेघर हुए हैं, जो अतराफ के जंगलात और हमसाया मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हैं।
रोहिंग्या के मुसलमानों पर जो जुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं, उस पर आलमी इदारों खासतौर पर अक्वामे मुत्तहिदा बहुत ही खामोश है, या अगर रद्देमल भी सामने आ रहा है तो बहुत ही कमजोर किस्म का रद्देमल सामने आ रहा है। तो क्या समझते हैं कि इसके पसे पर्दा कौन से अवामिल हो सकते हैं?
देखिए असवर, आपने बड़े अच्छे नुक्ते की जानिब इशारा किया कि अक्वामे मुत्तहिदा का किरदार खासतौर पर रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से बहुत ही कमजोर और नाकिस रहा है। अब तक आलमी इदारों ने जो कुछ भी कहा है वो ज़बानी जबा खर्च से आगे नहीं बढ़ा है। अमली इकदामात अगर हुए हैं तो बहुत मुतनासिब नहीं है उस सानहे और उस ट्रेजिडी के जो जिसका सामना रोहिंग्या मुसलमानों को है। और अलमिया यही है कि आलमी सतह पर अक्सर ये मुशाहिदा किया गया है कि ऐसे मामलात में, ऐसे आलमी क्राइसिस के अंदर के जहाँ जिनका ताल्लुक बराह रास्त मुसलमानों से हो, उसमें आलमी इदारों के जो किरदार है वो या तो इंतहाई खामोशी का रहता है, या अगर वो कुछ इकदाम अंजाम देते हैं या काम करते हैं तो वो इंतहाई कमज़ोर, नाकिस और उनमें मुख्तलिफ किस्म की या देर से ही इकदाम किए जाते हैं। जैसा कि रोहिंग्या मुसलमानों के हवाले से हम देखते हैं कि आलमी इदारे जो हैं उन्होंने बहुत देर से जो है वो तहरुक उनमें पैदा हुआ है, और थोड़ी बहुत मदद जो है वो अक्वामे मुत्तहिदा ने बांग्लादेश में जो सरहद पर जो रोहिंग्या मुसलमान कैंपों में मुकीम है वहाँ पर पहुँचाई है। कुछ कैंप्स वहाँ उन्होंने लगाना शुरू कर दिए, अलबत्त 3 कैंप वहाँ बहुत पहले से कायम है। यानी ये मामला ताज़ा तो है नहीं कि इस मामले को, यानी इस कोई ताज़ा शुरू होने वाला मामला नहीं कि जिसको फौरी तौर पर हल करने की बात की जाती। ये मामला सन 70 से चल रहा है और आज तक अक्वामे मुत्तहिदा इस मामले को हल नहीं कर पाई। और मामला सिर्फ इतना है कि रोहिंग्या मुसलमान को, मुसलमानों को म्यांमार की हुकूमत अपना शहरी तस्लीम नहीं करती,
जबकि वो हम देखते हैं कि सैकड़ों बरसों से
जी 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 ये यानी वो सदियों से वहां आबाद हैं, और इनको उनकी एक बड़ी तादाद को, यानी उनकी एक काबिल कदर तादाद तो उस वक्त से आबाद है जब से म्यांमार का वजूद नहीं था। यानी यहाँ बादशाहत थी और ये एक शाही हुकूमत थी, उस दौर से वहां पर आबाद है। लेकिन साम्राजी दौर जो है, यानी बरतानवी साम्राज्य का जो दौर था जब उन्होंने कब्जा किया, तो बांग्लादेश के से जो है मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद को उस वक्त भी ले जाकर उन्होंने वहां पर आबाद किया था। तो ये उससे पहले से कि जब म्यांमार आजाद हुआ उससे पहले से आबाद है। मेरे कहने का मतलब यह था कि देखिये मशरकी तिमूर का मामला हमारे सामने है,
बिल्कुल,
وہاں کی آبادی مسلمان نہیں تھی، ایک مسلم ملک انڈونیشیا کے ساتھ ان کا رابطہ تھا. جیسے ہی وہاں پر جو ہے وہ علیحدگی کی تحریک شروع ہوئی، سارے عالمی ادارے وہاں سرگرم ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہاں پر دباؤ ڈالا، ریفرنڈم بھی کرایا اور آزادی کی تحریک کرا کے اس کو الگ الگ بھی کر دیا گیا. لیکن
جنوبی سوڈان
کے ساتھ انہوں نے اسی طرح کیا. جنوبی سوڈان کا واقعہ اسی طرح سامنے ہے. تو یہ ساری مثالیں چیدہ جو اگر آپ دیکھنا چاہیں،
یعنی جو مسلمانوں سے علیحدہ ہونا چاہے ان کی تو حمایت ہے،
ان کی فوری طور پر عالمی ادارے اس کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں کا مسئلہ ہو، جہاں مسلمانوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو، وہاں پر عالمی ادارے دیر سے سرگرم عمل دکھائی دیتے ہیں. تو یہی صورتحال کا سامنا جو ہے وہ ہمیں کچھ میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے.